بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے دہلی کے ریاستی انتخابات کے نتائج اور حکومت سازی کی تیاری، اور مجموعی طور پر ہندوستان کی دیگر چار ریاستوں کی صورتحال اور وہاں حکومت سازی اور انتخابی نتائج اور اس کے محرکات. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. یہ ناظرین، یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ گزشتہ 8 تاریخ کو جو انتخابی نتائج دہلی کی 5 ریاستوں کے سامنے آئے وہ انتہائی چونکا دینے والے تھے. 4 ریاستوں میں بی جے پی کو واضح اکثریت اور برتری حاصل ہوئی. میزورام میں صرف کانگریس نے اقتدار میں دوبارہ واپسی کی، لیکن جو سب سے دلچسپ مقابلہ تھا وہ دہلی کی ریاستی اسمبلی کا تھا، جہاں ایک نئی پارٹی نے سب کو حیرت میں ڈال دیا اور سب اس کی کارکردگی پر متحیر ہو کر رہ گئے، یعنی اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی، جسے مخفف آپ بھی کہتے ہیں. بہرحال دہلی میں شروع شروع میں انتخابی نتائج آنے کے بعد یہ ہو رہا تھا کہ شاید صدر راج نافذ ہو، چونکہ اروند کیجریوال نے یہ کہا تھا کہ ہم نہ تو کسی کو حمایت دیں گے اور نہ ہی کسی کی حمایت حاصل کریں گے، اور تینوں جماعتوں میں سے کسی کو بھی اتنی سیٹ نہیں ملی تھی کہ وہ اکیلے دم پر حکومت بنا سکے. اور تاریخ میں ہندوستان کی شاید ریاستی اسمبلی کی تاریخ میں یا مرکزی پارلیمنٹ کی تاریخ میں بھی ایسا پہلی بار ہو کہ کسی پارٹی کو حمایت لوگ زبردستی دے رہے تھے اور پارٹی حمایت لینے کے لیے تیار نہیں تھی. لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ اروند کیجریوال جو عام آدمی پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے کچھ شرطیں عائد کی ہیں اور ان شرطوں کی بنیاد پر کانگریس سے حمایت لینے کی جو وہ حامی بھر لیے، نہ کہ حمایت مانگی. بہرحال یہ بڑا دلچسپ واقعہ اور صورتحال، اس پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں.
حال ہی میں ہندوستان کی 5 ریاستوں دہلی، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، راجستھان اور میزورم میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے نتائج کئی اعتبار سے توقعات سے غیر متوقع رہے. چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور راجستھان میں کانگریس کو اپنی ترینہ حریف جماعت بی جے پی کے ہاتھوں زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ میزورم میں کانگریس بڑی مشکل سے اپنی حکومت بچانے میں کامیاب ہو سکی. سب سے زیادہ حیران کن صورتحال ریاست دہلی میں پیش آئی، جہاں پچھلے 15 برس سے کانگریس کی حکومت چلی آ رہی تھی. اگرچہ اس بار دہلی میں کانگریس کی صورتحال زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ سماجی کارکن انور کیجریوال کی نو تاسیس عام آدمی پارٹی اتنی زیادہ نشستیں حاصل کر لے گی. نتائج کے مطابق دہلی اسمبلی کی 70 نشستوں میں سے عام آدمی پارٹی نے 28 اور بی جے پی نے 32 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ کانگریس بمشکل 8 نشستیں حاصل کر سکی. دہلی کے انتخابی نتائج بی جے پی اور کانگریس دونوں کے لیے حیران کن رہے ہیں. بی جے پی کے سربراہ نریندر مودی نے دہلی اسمبلی کے انتخابات کے لیے الیکشن کمپین میں براہ راست حصہ لیا اور اپنی پارٹی کے امیدواروں کے حق میں 12 جلسے کیے تھے، لیکن وہ واحد بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آنے کے باوجود حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. البتہ دہلی میں بی جے پی کو جو کامیابی ملی ہے اس میں عام آدمی پارٹی کا بڑا ہاتھ ہے، جس نے کانگریس کا ووٹ بینک توڑنے میں اہم کردار ادا کیا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عام آدمی پارٹی نے 28 نشستیں جیت کر بی جے پی کو دہلی میں تاریخ ساز کامیابی سے محروم کر دیا ہے. کانگریس کے لیے اس سے بڑا دھچکا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے دہلی میں 15 برس سے چلی آ رہی حکومت سے ایسے ہاتھ دھونا پڑا ہے جیسے وہ کبھی سیاست میں مقبول نہ تھی. البتہ دہلی میں کوئی بھی جماعت تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تاہم ریاست کے لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ نے عام آدمی پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دی ہے اور کانگریس پارٹی نے اپنی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ہے. عام آدمی پارٹی شروع سے ہی یہ اعلان کر چکی تھی کہ وہ حکومت بنانے کے لیے نہ تو کسی پارٹی کی حمایت کرے گی اور نہ ہی کسی پارٹی کی حمایت حاصل کرے گی. بعد ازاں پارٹی کے رہنما اروند کیجریوال نے بعض شرائط کے ساتھ حکومت بنانے پر آمادگی ظاہر کر دی. خبروں میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کرپشن اور بدعنوانیوں کے خاتمے سمیت 18 شرائط سے متعلق خطوط کانگریس اور بی جے پی کو ارسال کیے تھے اور کہا تھا کہ اگر وہ ان سے اتفاق کریں تو عام آدمی پارٹی ان کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتی ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق بی جے پی نے عام آدمی پارٹی کے خط کا جواب دینے کی زحمت کبارہ نہیں کی، جبکہ کانگریس نے 18 میں سے 16 شرائط پر اتفاق کر لیا ہے۔ کانگریس کی جانب سے عام آدمی پارٹی کے پیش کردہ بیشتر شرائط سے اتفاق کر لیے جانے کے بعد پارٹی کے رہنما اروند کیجریوال نے یہ کہا ہے کہ وہ اس بارے میں حتمی فیصلہ عوام کی رائے سے کریں گے، اور اگر عوام نے اجازت دی تو حکومت سازی کا کام شروع کیا جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی نے دہلی کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس بارے میں اپنی رائے ہاں یا نہیں کی صورت میں خطوط، ای میل اور ایس ایم ایس کے ذریعے یا سوشل ویب سائٹ پر موجود پارٹی کے ویب پیج کے ذریعے ارسال کریں۔ دہلی میں حکومت سازی عام آدمی پارٹی کے لیے کڑی آزمائش ہے، کیونکہ اس کے پاس حکومت سازی کا نہ تو تجربہ ہے اور نہ ہی تجربہ کار افراد موجود ہیں۔ دہلی سے نکل کر اگر ریاستی انتخابات کے نتائج کو قومی سطح پر دیکھا جائے تو اس وقت ہندوستانی میڈیا میں ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ حالیہ ریاستی انتخابات کے نتائج کا آئندہ برس ہونے والے لوک سبھا انتخابات پر کیا اثر پڑے گا، کیا لوک سبھا کے انتخابات میں مودی فیکٹر اپنا کام دکھانے میں کامیاب رہے گا یا نہیں۔ ریاستی اسمبلیوں کے انتخابی نتائج کا اگر الگ الگ جائزہ لیا جائے تو یہ بات پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ صرف راجستھان میں بی جے پی کو مودی کی وجہ سے توقع سے بڑھ کر کامیابی ملی ہے۔ جہاں تک مدھیہ پردیش کی بات ہے تو اس میں بی جے پی کی کامیابی وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کی رہی نے منت ہے۔ چھتیس گڑھ میں بی جے پی کو کانگریس کے ساتھ کانٹے کا مقابلہ کرنا پڑا اور وہ بڑی مشکل سے اکثریت حاصل کر پائی۔ اس کامیابی میں بھی مودی سے زیادہ وزیر اعلیٰ رام سنگھ کی نیک نامی نے اپنا اثر دکھایا ہے۔ میزورم میں کانگریس نے اپنی برتری برقرار رکھی ہے، جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ شمالی ہندوستان کے ہندی بولنے والے علاقے اگرچہ اس کے ہاتھ سے جاتے رہے ہیں، لیکن مشرقی اور جنوبی ہندوستان میں اب بھی اس کی گرفت مضبوط ہے اور وہ بدستور قومی جماعت ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ بی جے پی کے سربراہ نریندر مودی نے اگرچہ ملک کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے انتخابی ہلچل پیدا کر دی ہے، تاہم آئندہ لوک سبھا کے انتخابات میں بی جے پی کو تاریخ ساز کامیابی دلانے کے بارے میں ان کی کوششوں پر زیادہ اعتماد کا اظہار نہیں کیا جا رہا، کیونکہ مودی کی تمام تقریروں اور بیانات میں ہندوتو پر زور ہے اور کانگریس پر تنقید کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ حالیہ ریاستی انتخابات سے بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہندوستان میں عام آدمی کو ان معاملات سے اب کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی رہنما کرپشن کے خاتمے اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے کوئی قابل عمل منصوبہ پیش کریں۔ دوسری طرف کانگریس پارٹی بھی کم و بیش ایسی ہی صورتحال کا شکار ہے اور اس نے بھی سارا زور مودی کو فرقہ پرست اور ملک کی اتحاد و یکجہتی کے لیے خطرناک ثابت کرنے پر لگا رکھا ہے۔ ادھر مارکسی کمیونسٹ پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ عوام بی جے پی اور کانگریس دونوں سے مایوس ہو چکے ہیں اور وہ کسی تیسری قوت کی تلاش میں ہیں جو انہیں معاشی مسائل اور سماجی عدم تحفظ سے نجات دلا سکے۔ ہندوستان میں بیشتر مبصرین کا خیال ہے کہ لوک سبھا کے انتخابات میں بی جے پی کو کانگریس سے زیادہ نشستیں ملنے کی توقع ضرور ہے، لیکن اسے مرکز میں حکومت سازی کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ بی جے پی کی قیادت اس وقت نریندر مودی کے ہاتھ میں ہے جو اپنے سیاسی اتحادیوں کو جذب کرنے کے زیادہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ لہذا 2014 کے عام انتخابات میں واحد بڑی جماعت کے طور پر سامنے آنے کے باوجود مخلوط حکومت بنانے کے لیے این ڈی اے کی طرز کا کوئی اتحاد قائم کرنا نریندر مودی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعض حلقے یہ بھی خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ لوک سبھا کے انتخابات میں ہو سکتا ہے کہ علاقائی نان کانگریسی اور نان بی جے پی پارٹیاں کانگریس اور بی جے پی دونوں سے زیادہ نشستیں حاصل کر کے مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔
یا ناظرین، حالیہ 5 ریاستوں کے ریاستی انتخاب کے نتائج سے لے کر آئندہ برس ہونے والے عام انتخابات کے ممکنہ نتائج کے بارے میں ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ تجزیاتی رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب چلتے ہیں سیدھے دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی جناب شکیل شمسی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی شکیل صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا اب دہلی میں صدر راج کے نفاذ کا امکان ختم ہوتا جا رہا ہے؟
نہیں، بڑھ گیا ہے صدر راج کے نافذ ہونے کا امکان، زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ اروند کیجریوال نے جو شرط رکھی ہے کل انہیں اناؤنس کیا تھا کہ ہم اتوار تک کا مہلت چاہتے ہیں، اور انہوں نے فیس بک اور ٹویٹر اور دوسری سوشل ویب سائٹس اور خطوں کے ذریعے سے اور لکھے ہوئے پرچے بانٹ کر دہلی میں انہیں لوگوں سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ حکومت بنائے کہ نہ بنائے۔ یہ اور سنا ہے میں نے کہ 4 گھنٹے میں، جب ان کے اعلان کرنے کے 4 گھنٹے کے بعد 3 لاکھ رسپانسز ان کے پاس آ گئی تھیں۔ اب کیا رسپانسز آئیں یہ تو نہیں معلوم، لیکن یہ بات سنڈے کو طے ہوگی کہ وہ اروند کیجریوال حکومت بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے۔ اس بیچ ابھی تک اوپن رکھا ایک طریقے سے، اسمبلی جو ہے وہ سسپینڈیڈ एनिमेशन में है, उसको बर्खास्त नहीं किया गया है, वरना उसको फिर बर्खास्त करके एक नए इलेक्शन के लिए सिलसिला हो सकता है अगर गवर्नर नजीब जंग उसकी सिफारिश करें, लेकिन वो भी अभी इतवार और पीर तक इंतजार करेंगे कि अरविंद केजरीवाल का फैसला क्या होता है। अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, वाज़े अक्सरियत दिल्ली में चाहिए 36 मेंबराने पार्लियामेंट की, और उनके पास 28 हैं और 8 कांग्रेस के लोग उनको गैर मशरूत हिमायत देने के लिए तैयार हैं, जिससे कि उनके पास अक्सरियत हो जाती है वाज़े। लेकिन वो अक्सरियत जो है वो लेकर उनको मालूम है कि 6 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर अगर वो अच्छा काम करेंगे तो भी कांग्रेस गिरा देगी, और अगर बुरा करेंगे तब भी गिरा देगी, और उसके बाद चाहेगी कि नया इलेक्शन हो जाए। कांग्रेस पर वो भरोसा नहीं कर सकते, कांग्रेस ने ये काम बहुत किया पिया पहले भी, तो वो समझदार आदमी हैं और बहुत सोच समझ कर फूक कर कदम रख रहे हैं। बीजेपी भी पहले कह रही थी कि हम आपको बाहर से मतलब वो करते हैं, आपका मुखालिफत नहीं करेंगे आपकी, आप हुकूमत बनाइए, लेकिन ये सब वो इसलिए कर रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने आवाम से वायदे किए हैं वो वायदे बहुत ऐसे हैं कि जो लगता है लोगों को पूरा नहीं हो सकते हैं कि भाई बिजली की हम कीमत इतनी कम कर देंगे, 700 लीटर पानी हर घर में मुफ्त देंगे, हम जो गैर रेगुलराइज कॉलोनीज हैं उनको रेगुलराइज कर देंगे, ऐसे बहुत से लुभावने वायदे किए उन्होंने जो आवाम के लिए हैं, और उनको ये उम्मीद है कि वो करप्शन फ्री सोसाइटी बनाने में भी मदद कर सकेंगे, जो उनका सबसे बड़ा प्लान था जिसके जरिए वो निकले हैं बाहर। आपको मालूम होना चाहिए, मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूंगा कि जो अन्ना हजारे के जो तहरीक थी लोकपाल बिल लाने की, उसी के बतन से ये आप पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है उसका पैदाइश हुई थी, और इन लोगों ने शुरू शुरू में अन्ना का नाम लेकर काम किया, लेकिन बाद में अन्ना से पूरी तरीके से अलहदगी हो गई, इलेक्शन के करीब तो अन्ना ने बिल्कुल डिसओन कर दिया उनको। आज वो लोकपाल बिल भी आज पार्लियामेंट में पास हो गया और सभी पार्टियों ने उसको मंजूरी अपनी दे दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस लोकपाल बिल से खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि जो अन्ना ने कहा था वो ये लोकपाल बिल नहीं है, इसमें ये कांग्रेस का लाया हुआ लोकपाल बिल है और सरकारी लोकपाल बिल है और इसमें ये खामियां हैं। अब उनसे अन्ना से बिल्कुल एकदम आमने सामने टकराव की नौबत है, तो लेकिन वो अपनी पॉपुलैरिटी को कैश करना चाहते हैं, उनको एक गैर मुतवक्के कामयाबी मिली है, आम आदमी पार्टी को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था, हम लोग भी उनको बहुत ज्यादा सीरियसली टैकल नहीं कर रहे थे और लगता था कि ये 4-5 सीटों से ज्यादा नहीं ला सकेंगे, लेकिन यही नहीं 28 सीटें वो लाए हैं और 12 सीटों के ऊपर उनके उम्मीदवार, बल्कि 20 सीटों पर तकरीबन उनके उम्मीदवार 2 नंबर की पोजीशन पर आए हैं। कई मुस्लिम इलाकों में भी जहां से मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस के जीते हैं वहां पर भी आपको दूसरे नंबर पर रहने का मौका मिला, यानी कि मुसलमानों ने भी उनको काफी हद तक वोट दिए, बल्कि कई मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको काफी वोट मिले हैं। तो उनकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह जो थी वो यह है कि लोग बीजेपी और कांग्रेस से तंग हैं, परेशान है, एक मुतबादिल की उनको तलाश थी, वो मुतबादिल उनको मिल गया आम आदमी पार्टी की शक्ल में। जो और रियासतें थी वहां पर कोई मुतबादिल नहीं था, राजस्थान में अशोक गहलोत से लोग परेशान थे लेकिन उनका कोई मुतबादिल नहीं था तो उन्होंने बीजेपी को धड़ल्ले से वोट दिया, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में कोई मुतबादिल नहीं था तो उनके उन्होंने फिर उसी पार्टी को जिताया जिसने उनको लगा कि काम बहुत किया, क्योंकि जो वहां के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान उन्होंने काफी काम किया है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह की मजबूत हुकूमत थी लेकिन रमन सिंह को फिर भी थोड़ा वहां पर टफ फाइट देना पड़ी क्योंकि अभी इलेक्शन से 6-7 महीने पहले ही वहां नक्सल जो दहशतगर्द है उस इलाके में सरगर्म, उन्होंने कांग्रेस की बहुत बड़ी लीडरशिप को मार दिया था जिसकी वजह से एक सिंपैथी वेव थी, एक हमदर्द की लहर थी वहां के ऊपर, तो वहां पर कांग्रेस ने थोड़ी टफ फाइट की और मिजोरम में तो उसका गढ़ था, मिजोरम में तो उनको जीतना ही था, लेकिन हर जगह पर मसला यह था कि लोगों के पास मुतबादिल नहीं था, सिर्फ दिल्ली में एक ऐसी जगह थी कि जहां पर एक सीरियस मुतबादिल की शक्ल में आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आई, और इसका जो लोगों ने खैरमकदम बहुत जबरदस्त तरीके से किया क्योंकि एक सरप्राइज विन थी, एकदम बिल्कुल नहीं लगता था लोगों को कि इस तरीके से विनर वो लोग जीतेंगे और इतनी कामयाब होंगे, उनके बहुत से कैंडिडेट से 300-400 वोटों से हारे हैं, तो इससे ये लगता है, इससे उनका हौसला भी बहुत बढ़ गया और आवाम में भी नया जोश है और उनको लगता है कि अगर नया इलेक्शन हो गया तो कोई भी ताकत आम आदमी पार्टी को वाज़े अक्सरियत हासिल करने से नहीं रोक सकती है। इस वक्त दिल्ली में बीजेपी के पास भी वाज़े अक्सरियत नहीं है और कांग्रेस के पास भी नहीं है, अगर बीजेपी के पास वाज़े अक्सरियत होती तो वो जरूर बनाती हुकूमत, लेकिन उसके पास सिर्फ 32 सीटें हैं और वो अक्सरियत से 4 सीटें कम है उनके पास। अब ये कहा जा रहा है कि मोदी की वेव, तो मोदी की वेव मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कहीं पर काम किया, क्योंकि अगर मोदी की वेव होती तो वो मिजोरम में भी चलती, मोदी की वेव होती तो दिल्ली में भी चलती, बल्कि मोदी की वेव को पंक्चर करने का काम या मोदी का जो रथ था उसको पंक्चर करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। और आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया है कि बीजेपी खुद क्लेम नहीं कर रही कि जो कुछ हमको सीटें मिली थी मोदी की वजह से मिली थी। यहां तक कि आडवाणी ने जब अभी इस पर जीत के ऊपर तस्करा किया तो उन्होंने रमन सिंह को क्रेडिट दिया मध्य प्रदेश के लिए, विजय राजे सिंधिया को दिया राजस्थान के लिए, और मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के काम को उसकी तारीफ की। तो इस वक्त बहुत ज्यादा जो उम्मीदें लेकर ये लोग उतरे थे कि हिंदुत्व का प्लान जो है वो बहुत कामयाब होगा और हिंदुत्व का नारा जो मोदी का एक चेहरा उन्होंने बनाया उसकी वजह से उनको कामयाबी मिलेगी, लेकिन दिल्ली ने सारा उनको पंक्चर कर दिया। अगर वो दिल्ली में भी कामयाब हो जाते, अगर वो दिल्ली में भी मेजोरिटी ले आते, तब लोग यही कहते हैं कि ये मोदी की वेव है। और क्योंकि मोदी ने दिल्ली में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी रैलीज की थी और उन रैलीज का बड़ा ज्यादा बखान किया गया था, तो ये सिलसिला है अभी। और देखिए क्या होता है, आप मंडे तक इंतजार कीजिएगा, तभी मालूम होगा कि क्या हकीकी है और किस करवट ये उठ बैठता है।
जी बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं लंदन स्टूडियो, जहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर शौजब हैदर साहब, सियासी उमूर के माहिर। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि भी शकील शमसी साहब ने कहा कि अगर वहाँ पर गवर्नर राज नाफिज हो जाता है और कोई भी हुकूमत, कोई भी पार्टी हुकूमत नहीं बनाती और दोबारा इलेक्शन होता है, तो क्या जो मकबूलियत इस वक्त है आम आदमी पार्टी की, जिसे आप भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वाज अक्सरियत हासिल करने से, आप क्या कहते हैं?
कल जो और बल्कि आज जो लोकसभा में जो बिल लोकपाल का बिल पास हुआ है, मुझे लगता है उसका बहुत ज़्यादा असर होगा अगले इलेक्शंस के ऊपर, अगर इलेक्शंस में जाते हैं, क्योंकि जैसे शमसी साहब ने कहा कि एक ऑप्शन था दिल्ली में कि कांग्रेस को और बीजेपी को हटाने के लिए, और उन्होंने उसका यूज़ किया उसका उस मैंडेट का। तो मुझे लगता है कि और मुद्दा, मेन मुद्दा जो था वो करप्शन ही था, और अब एक स्टेप उन्होंने देखा और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कह रहे हैं कि कहना में राहुल गांधी जो हैं वो लोकपाल बिल दिल्ली के इलेक्शन के बाद उन्होंने सोचा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। सो अब वो बेसिकली जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है बहुत देर हो गई हो, लेकिन बात वही आती है कि अगर अगली बार इलेक्शन हुआ और नहीं मिलता है पूरी मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी को, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे तो एक बहुत बड़ा एक ये मसला है जो सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आगे आम आदमी पार्टी लेके जाती है इसको।
जी शमसी साहब, कांग्रेस ने 18 में से 16 शर्तें मान ली हैं, दो शर्तें उसने क्यों नहीं मानी?
नहीं, वो दो शर्तें उसने कहा कि ये असेंबली के प्रीव्यू से बाहर है, असेंबली में उसका फैसला नहीं हो सकता। जो उन्होंने कहा था कि ये असेंबली में एक तो लोकपाल के बारे में बातचीत थी कि उसको नाफिस करेंगे जो उनका जन लोकपाल बिल है, तो वो उनके प्रव्यू से बाहर थी। उन्होंने कहा था ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो जो 16 उनकी मांगे थी वो शहरी जो सहूलियात थी उनके मुतालिक थी, और जो सेंट्रल के हाथ का काम है उसको वो नहीं कर सकते थे, तो उसको उस पर वो आमादा नहीं हुए। और वो एक तरीके से उन्होंने कहा कि 18 का 18 ठीक है, आप अगर कर सकते हैं तो करिए, लेकिन वो इतना आसान नहीं, अगर वो मानना होता तो उस पर भी राजी हो जाते, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप जो समाज जो इस वक्त आप पार्टी है वो इतनी ज्यादा उसके हौसले बुलंद हैं, जो उनके वर्कर्स में सपोर्ट दिखाई पड़ रहा, जो उनके वर्कर्स का कामकाज का तरीका दिखाई पड़ रहा है, जिस जगह वो बोलते हैं, जहां जलसे हो रहे हैं अभी, वो जगह जगह पर अगर जलसे कहीं करते तो वहां पर एक हुजूम होता है उनको देखने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए, क्योंकि वो सब बहुत आम जिंदगी से उठकर लोग आए हैं सामने। उसमें कोई आदमी ऐसा नहीं कि जो बहुत नामवर रहा हो या जिसको लोग जानते रहे इलेक्शन से, सिवाय मुझे लगता है कि कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल और शाजिया इल्मी और 3-4 लोगों को छोड़कर बाकी कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था कि जिसका नाम हम लोगों ने पहले सुना हो। तो वो लोग बहुत हौसला उनका बहुत बढ़ चुका है और उनको ये लगता है पूरी तरीके से कि अगर इलेक्शन होगा, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी ज्यादातर लगता है कि अगर ये कामयाब, अगर इलेक्शन हुए तो इनको ज्यादा सीटें मिलेंगी, जितनी आज हैं उससे कहीं ज्यादा मिलेंगी। क्योंकि अभी तक जो मुस्लिम एरिया आप देखिए कि मुस्लिम एरिया में क्या हुआ है कि सब कांग्रेस के लोग जीते हैं। ये एक जगह के ऊपर तो शोएब इकबाल जो है वो तो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से खड़े हुए थे, वो जीत गए। बाकी अकलियती इलाकों यानी कि 8 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, उनमें से 8 में से 6 सीटें अकलियतों की हैं, यानी कि 2 सिखों ने जीती हैं और 4 मुसलमानों ने। तो ये अकलियतों का एक तरीके से इतमाद उसके ऊपर कांग्रेस पर दिखाई पड़ा है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि वो अकलियतों पर का इतमाद कांग्रेस पर नहीं था, उनको ये था कि मुसलमान कैंडिडेट हारने ना पाए, और वो मुसलमान कैंडिडेट जो वहां से लड़ रहे थे उनकी कारकर्दगी गुज़श्ता 5 साल में बहुत अच्छी रही थी, उन्होंने अपने इलाके के तरक्याती कामों में काफी मदद की थी। तो अब लोगों को ये लग रहा है कि जहां के ऊपर थोड़े थोड़े वोटों से मुस्लिम इलाकों में हार गए हैं, वहां पर मुसलमान ज्यादा संजीदगी के साथ अब वोट देगा इनको। और भी हमारे जैसे मेरे ही इलाका है, यहाँ पर मुसलमानों ने आपको ही जिताया जो जंगपुरा का इलाका कहलाता है। तो कई जगह है कि जहां के ऊपर मुस्लिम वोट डिसाइसिव था, तो ये लगता है यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस को और बीजेपी को नुकसान होने वाला और कांग्रेस पर
जी। बहुत शुक्रिया शकील शमशी साहब, मैं फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में जी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब राशिद अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
राशिद अलवी साहब, बहरहाल किसी भी कांग्रेसी लीडर से शायद ये सवाल खुद उसके लिए सख्त हो कि क्यों दिल्ली में इस तरह से सफाया हो गया, और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि राजस्थान में। लेकिन फिलहाल मैं दिल्ली के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस को बहुत सख्त हार का सामना देखना पड़ा है, बहुत जबरदस्त शिकस्त हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की जमहूरियत की ये खूबसूरती भी है, इख्तदार आता है चला जाता है, कभी किसी पार्टी की सरकार होती है कभी किसी पार्टी की सरकार होती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर इतना स्मूथ है, उसी से हिंदुस्तान की जमहूरियत की खूबसूरती और स्टेबिलिटी का अंदाजा होता है। हालांकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार ने डेवलपमेंट के बहुत काम कराए। 2004 में जब पहली बार अटल जी की सरकार थी और उन्होंने चुनाव कराए 6 साल के बाद, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें थी। चुनाव हुआ गालिबन दिसंबर का महीना था, दोनों जगह बीजेपी जीती, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी तीनों जगह बीजेपी जीती, और अटल जी ने और उनकी सरकार ने फौरन पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, यही कह के कि ये तो हम जीते हैं अब पार्लियामेंट में भी अब जीतेंगे। मैंने उस वक्त भी लोकसभा में कहा था जिन वजूहात के बिना पे आप यहां जीते हैं उन्हीं वजूहात के बिना पे आप पार्लियामेंट हारेंगे, और वही हुआ। 2004 में उनकी सरकार चली गई। तो विधानसभाओं के असेंबलीज के चुनाव के मुद्दे अलहदा हैं और पार्लियामेंट के मुद्दे अलहदा हैं, और मैं इनको सेमीफाइनल नहीं मानता हूं।
जी बहुत शुक्रिया, आप टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, जहमत होगी आपको, मैं फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। डॉक्टर शौजब साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल साहब ने हुकूमत बनाई तो, यानी कांग्रेस की हिमायत लेकर या बीजेपी की हिमायत लेकर अगर वो हुकूमत बनाते हैं तो एक तरह से वो सियासी खुदकुशी होगी, आप क्या कहते हैं?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो सियासती ख़ुदकुशी होगी। जैसे अलवी साहब ने अभी बताया कि उनको आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं, तो मुझको बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि भाई मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन जो ज़्यादातर उनको फैसले करने होंगे, अलवी साहब ने जैसे बोला, वो चीफ मिनिस्टर करेगा, वो असेंबली नहीं करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सियासती ख़ुदकुशी कहलाई जाएगी।
जी शकील शमशी साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या जो इन्होंने ये फैसला किया है कि हम 280 जलसे करेंगे और आवाम की राय लेंगे, तो ये काम ये पहले नहीं कर सकते थे? पहले ये कर लेते, बाद में जो है वो कांग्रेस को ख़त लिखते या बीजेपी को ख़त लिखते, उन्होंने ख़त पहले लिखा और अब जलसे बाद में करेंगे, और अगर आवाम ने ये कह दिया कि आप हुकूमत न बनाएं तो फिर जो उन्होंने ख़त लिखे हैं और कांग्रेस ने जो शर्तें मान ली, तो फिर वो आवाम की बात मानते हुए कांग्रेस की हिमायत को एक बार फिर नकार देंगे और इनकार कर देंगे हिमायत लेने से?
देखिए, कांग्रेस ने के बाद उन्हीं ने इसलिए किया कि उनको ये तवक्को नहीं थी कि कांग्रेस मारेगी, जो शर्तें उन्होंने उनके सामने रखी थी, इसलिए वो उनको इस बात का यकीन था कि ये कांग्रेस नहीं मानेगी। लेकिन कांग्रेस ने उनको बिल्कुल क्लीन बोल्ड किया और कहा कि हम मानने को तैयार हैं, जो वरना वो कह रहे थे भाई हमारी चीज सख्त शर्तें थी, उन्होंने मानी नहीं तो हम क्या करें। तो बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि बीजेपी तो उनको सपोर्ट करने जा रही नहीं, एक ही पार्टी थी जिसने उनको सपोर्ट आउटसाइड सपोर्ट करने के लिए कहा है। तो ऐसे आलम में उनके पास अब कोई रास्ता तो था नहीं कि अगर उनको अब भी वो, मैंने कहा ना कि वो मुजब्जब है कि करे क्या, हुकूमत बनाए कि ना बनाए, क्योंकि हुकूमत बनाने में उनको 100 किस्म की परेशानियां, हुकूमत ना बनने में सिर्फ एक है कि फिर से इलेक्शन होगा, और इलेक्शन होने के लिए वो आवाम से चंदा मांगेंगे और फिर वो लड़ेंगे इलेक्शन। तो लेकिन अगर वो हुकूमत में जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना होगा, ये उनको पता है कि बहुत सी चीजें ऐसी कि जिनको इतना आसानी के साथ वो नाफिज नहीं कर पाएंगे, और जिसके लिए बहुत ज्यादा आपको मालूम, बिजली के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बहुत एक्टिव रोल अदा।
जी राशिद अलवी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब ये इलेक्शन के नतायज आए और आपकी पार्टी को शिकस्त हुई, तो आपकी आला क़यादत से लेकर निचली सतह के तमाम लीडरों ने कहा कि अब हमें खुद एहतसाबी का अमल शुरू करना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ कहाँ आपसे गलतियाँ हुई और किन किन मैदानों में आप अपना एहतसाब करेंगे?
देखिए मैं एक बात कहूं, दिल्ली के अंदर 15 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कोई भी सरकार हो, अवाम के एक्सपेक्टेशंस पे तमाम एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं किए जा सकते। ये सिर्फ दिल्ली और हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। अमेरिका से लेके और दुनिया के दूसरे कोने तक चले जाइए, सारे यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जहां जहां डेमोक्रेसी है हमेशा सरकारें बदलती रहती हैं। तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और यहाँ पे खुद वजीर आला को शिकस्त दे दी एक ऐसे शख्स ने जो बिल्कुल नया था। हमने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो जाएगा। और इसके अंदर यकीनन बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह एंटी इनकम्बेंसी है कि सरकार को लोग बदलना चाहते थे, अवाम का मूड था कि बदला जाए, और इसके अंदर महंगाई भी एक बड़ी वजह थी। लोग परेशान थे महंगाई की वजह से, और उसकी वजह से यहाँ पे नहीं बल्कि चारों स्टेट के अंदर हमको शिकस्त हुई और दूसरी सियासी जमाते चुनाव जीती।
जी राशिद अली साहब, आपने कहा कि 15 साल से दिल्ली में आपकी हुकूमत थी, हम मानते हैं कि आपकी पार्टी की हुकूमत 15 साल से दिल्ली में थी और यहाँ लोगों को एक तब्दीली चाहिए थी, लेकिन राजस्थान में तो जाहिर है कि अभी 5 ही साल से आपकी हुकूमत थी, या अगर चेंज आवाम चाहते थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश में क्यों चेंज नहीं चाहा या छत्तीसगढ़ में क्यों तब्दीली नहीं चाही?
देखिए एक बात मैं ये भी कहूंगा, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि महंगाई एक बड़ा मसला रहा, और इन चुनावों के अंदर हमारे खिलाफ दो तरीके की एंटी इनकम्बेंसी थी। एक लोकल एंटी इनकम्बेंसी थी, स्टेट के अंदर हमारी सरकार थी, और इसके साथ साथ जो मरकजी हुकूमत है उसकी भी एंटी इनकम्बेंसी इसके साथ जुड़ गई थी। महंगाई के बारे में बार बार सरकार ये बयान देती रही कि हम इसको कम करेंगे, लेकिन वो कम नहीं हो पाई। उसके भी बहुत सारे वजूहात हैं, बैनुल अक्वामी मसाइल अपनी जगह हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी अपनी जगह है, और इसके साथ साथ एक दो मरकजी हुकूमत का ये कमिटमेंट था कि हमें इकोनॉमी ठीक करनी है। शायद उन्होंने उस वक्त ये भी नहीं सोचा कि चारों स्टेट के अंदर चुनाव हो रहा है, हमें ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। राजस्थान और दिल्ली के चुनाव से एक दिन पहले डीजल की कीमत बढ़ गई। सरकार का अपना कमिटमेंट था, लेकिन अपोजिशन पार्टीज ने उसका फायदा उठाया। ये सारी वजूहात थी जिनकी वजह से हम चारों स्टेट के अंदर हमें शिकस्त हासिल हुई है।
जी राशिद अली साहब, खुद आपकी पार्टी में अभी इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं कि जो आला कयादत है उसमें तब्दीली होनी चाहिए और आइंदा जो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें अभी से वजीर आजम के ओहदे के नाम का ऐलान कर दिया जाना चाहिए। मनीष शंकर जैसे लोगों ने कहा, मनीष शंकर अय्यर ने, कि हार जो हुई है उसके जिम्मेदार मनमोहन सिंह साहब हैं। मनमोहन सिंह साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और शिकस्त जो है वो रियासतों में हुई है, लेकिन उन्होंने इस हार की जिम्मेदारी उन पर भी आयद की है। तो आप क्या समझते हैं कि अगला इलेक्शन आप किसके नाम पर लड़ेंगे अपनी पार्टी में?
देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि वज़ीर आज़म को जिम्मेदार ठहराया जाए, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हम पार्लियामेंट का चुनाव सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीडरशिप के अंदर ही ये चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी के अंदर ना इस तरीके की किसी की सोच है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के अंदर किसी तरीके की कोई तब्दीली लाई जाए, और ना ये मुमकिन है। इसलिए 2014 के अंदर वजीर आजम कौन होगा ये कलहदा सवाल है, लेकिन चुनाव सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क्यादत के अंदर ही होगा।
तो क्या ये पूछ सकता हूँ कि वजीर आजम के अहदे के उम्मीदवार राहुल गांधी ही होंगे?
देखिए, ये बात कहना कबल अज वक्त होगा कि कौन वजीर आजम होगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के वर्कर्स ये जरूर चाहते हैं कि अगला वजीर आजम राहुल गांधी हो।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। शौज़ब हैदर साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो लोकपाल बिल आज मंजूर हुआ है पार्लियामेंट से, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? और अगर कांग्रेस की जो मरकजी हुकूमत वो ले आई, तो क्या उसने अपनी शिकस्त को देख कर उससे कुछ हासिल करके ये लोकपाल बिल जो है वो पार्लियामेंट में उस पर बहस कराई और उसको मंजूरी दी?
जी, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी को दोनों को ही ये इस बात का एहसास था कि इलेक्शन के रिजल्ट इस तरफ जाएंगे जैसे गए। कांग्रेस को नहीं लगता था कि क्या नाम है वो इतनी बुरी तरह से हारेगी, और आम आदमी को नहीं पता था कि इतनी उनकी इतनी इतनी कॉन्फिडेंट जीत होगी। और मेरे हिसाब से ये काम 2011 में भी हो सकता था, ये काम पहले भी हो सकता था जब अन्ना ने पहले अनशन किए थे। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये एक रिएक्शन है जो एकदम से बिल पास हुआ इस दिल्ली की रिजल्ट्स के बाद।
शकील शमसी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो लोकपाल बिल मंजूर हुआ है इससे कांग्रेस को आइंदा इलेक्शन में कुछ फ़ायदा हो सकता है?
हाँ, कुछ फ़ायदा हो भी सकता है, लेकिन इसका क्रेडिट हर जो पार्टी है वो क्रेडिट लेना चाह रही है इसका। आप देखिए, बीजेपी भी कह रही है मुसलसल के साहब वो हमने और हमने इस पर जो सवालात उठाए थे उनको मान लिया गया। बीजेपी भी क्रेडिट ले रही है, हर एक पार्टी चाहती है उसका क्रेडिट ले। और लेकिन यही हुआ कि आज पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज ने खड़े होकर कहा कि ये जो लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, और इसका क्रेडिट सिर्फ अन्ना हजारे को जाता है या आवाम को जाता है। तो अब ये तो लोग फैसला करेंगे कि ये लोकपाल का असली फायदा किसको पहुंचा, अन्ना हजारे को, अन्ना हजारे की वजह से हुआ या आवाम की वजह से हुआ है और उनकी तहरीक पर हुआ है। किसी को वो क्रेडिट आवाम देते हैं कि नहीं देते हैं ये फैसला बाद में होगा, अभी नहीं हो सकता कि कांग्रेस को। लेकिन राहुल गांधी ने उसमें बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रोल किया था, राहुल गांधी ने उसमें बहुत ज्यादा इधर आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा एक्टिव होकर उसको पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अपोजिशन के माने बगैर तो वो पास नहीं हो सकता था, अगर राज्यसभा में अपोजिशन चाहती तो वो फेल कर देते उसको। तो इसमें अपोजिशन भी क्रेडिट तो लेगा ही, क्योंकि कांग्रेस तो लोकसभा से पहले पास करवा चुकी थी, राज्यसभा में तो अपोजिशन का बहुत बड़ा हाथ है, और जो दूसरी पार्टियां सिवाय समाजवादी पार्टी के तकरीबन हर पार्टी ने उनको सपोर्ट किया है। तो ऐसे माहौल में कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत वाजे क्रेडिट उनको मिल सकेगा। सब लोग, हर आदमी अपने अपने हिसाब से भुनाएगा, हर आदमी अपने बात कहेगा कि साहब वो तो हमने कराया, अगर हम ना करते तो कैसे होता।
जी राशिद अलवी साहब, एक सवाल आपसे करना ये चाहूँगा कि अभी हमारे शकील शमसी साहब ने एक बात की कि दिल्ली के जो नतायज आए उससे एक बात साबित हो गई कांग्रेस के लिए कि अकलियती, चाहे वो सिख हों चाहे वो मुस्लिम हों, वो अगर चाहें तो कांग्रेस को जिता भी सकते हैं और चाहें तो कांग्रेस को हरा भी सकते हैं। और इस बात हुआ भी यही कि बहुत से अकलियती इलाकों में कांग्रेस को शिकस्त हुई और जो 6 उनके कैंडिडेट जीते हैं वो अकलियती इलाकों से ही जीते हैं। तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि अकलियती या अकलियतों के मसाइल पर कांग्रेस एक बार फिर तवज्जो दे?
आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अकलियतों का एक बहुत अहम रोल है, और इलेक्शन के अंदर वो हराने और जिताने का दोनों का काम कर सकती। दिल्ली के अंदर अकलियत की अक्सरियत कांग्रेस के साथ रही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और हिंदुस्तान भर में रहती है। कांग्रेस पूरी कोशिश करती है कि अकलियतों के मफादात की निगहबानी करे, उनके मफादात का ख्याल करे, और उसके साथ साथ मुस्तकबिल के अंदर आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, हमें और ज्यादा करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार को ज्यादा अकलियतों के मफादात को देखना होगा, उनके मसाइल को हल करना होगा, उनके एतमाद को जीतना होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जहां तक सवाल लोकपाल के क्रेडिट का है, मैं जरूर कहूंगा, देखिए क्रेडिट सरकार को ही जाता है। राज्यसभा में सरकार की अक्सरियत नहीं है, इसलिए बगैर अपोजिशन के वो बिल पास नहीं हो सकता था। लेकिन बिल बनाना, बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना, ये सारे काम सरकार ही करती। अगर सरकार
उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे,
देखिए ये बात कहना कबल अज वक्त होगा कि कौन वजीर आजम होगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के वर्कर्स ये जरूर चाहते हैं कि अगला वजीर आजम राहुल गांधी हो।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिरूंगा। शौजब हैदर साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो लोकपाल बिल आज मंजूर हुआ है पार्लियामेंट से, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? और अगर कांग्रेस की जो मरकजी हुकूमत वो ले आई, तो क्या उसने अपनी शिकस्त को देख कर उससे कुछ हासिल करके ये लोकपाल बिल जो है वो पार्लियामेंट में उसे बहस कराई और उसको मंजूरी दी?
जी मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी को दोनों को ही ये इस बात का एहसास था कि इलेक्शन के रिजल्ट इस तरफ जाएंगे जैसे गए। कांग्रेस को नहीं लगता था कि क्या नाम है वो इतनी बुरी तरह से हारेगी, और आम आदमी को नहीं पता था कि इतनी उनकी इतनी इतनी कॉन्फिडेंट जीत होगी। और मेरे हिसाब से ये काम 2011 में भी हो सकता था, ये काम पहले भी हो सकता था जब अन्ना ने पहले अनशन किए थे। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये एक रिएक्शन है जो एकदम से बिल पास हुआ इस दिल्ली की रिजल्ट्स के बाद।
शकील शमसी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो लोकपाल बिल मंजूर हुआ है, इससे कांग्रेस को आइंदा इलेक्शन में कुछ फ़ायदा हो सकता है?
हाँ, कुछ फ़ायदा हो भी सकता है, लेकिन इसका क्रेडिट हर जो पार्टी है वो क्रेडिट लेना चाह रही है इसका। आप देखिए बीजेपी भी कह रही है मुसलसल के साहब वो हमने और हमने इस पर जो सवालात उठाए थे उनको मान लिया गया। बीजेपी भी क्रेडिट ले रही है, हर एक पार्टी चाहती है उसका क्रेडिट ले। और लेकिन यही हुआ कि आज पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज ने खड़े होकर कहा कि ये जो लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, और उसका क्रेडिट सिर्फ अन्ना हजारे को जाता है या आवाम को जाता है। तो अब ये तो लोग फैसला करेंगे कि ये लोकपाल का असली फायदा किसको पहुंचा, अन्ना हजारे को, अन्ना हजारे की वजह से हुआ है या आवाम की वजह से हुआ है, उनकी तहरीक पर हुआ है। किसी को वो क्रेडिट आवाम देते हैं कि नहीं देते हैं ये फैसला बाद में होगा, अभी नहीं हो सकता कि कांग्रेस को। लेकिन राहुल गांधी ने उसमें बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रोल किया था, राहुल गांधी ने उसमें बहुत ज्यादा इधर आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा एक्टिव होकर उसको पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अपोजिशन के माने बगैर तो वो पास नहीं हो सकता था, अगर राज्यसभा में अपोजिशन चाहती तो वो फेल कर देते उसको। तो इसमें अपोजिशन भी क्रेडिट तो लेगा ही, क्योंकि कांग्रेस तो लोकसभा से पहले पास करवा चुकी थी, राज्यसभा में तो अपोजिशन का बहुत बड़ा हाथ है, और जो दूसरी पार्टियां सिवाय समाजवादी पार्टी के तकरीबन हर पार्टी ने उनको सपोर्ट किया है। तो ऐसे माहौल में कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत वाजे क्रेडिट उनको मिल सकेगा। सब लोग, हर आदमी अपने अपने हिसाब से बुनाएगा, हर आदमी अपने बात कहेगा कि साहब वो तो हमने कराया, अगर हम ना करते तो कैसे होता।
जी राशिद अलवी साहब, एक सवाल आपसे करना ये चाहूँगा कि अभी हमारे शकील शमसी साहब ने एक बात की कि दिल्ली के जो नतायज आए उससे एक बात साबित हो गई कांग्रेस के लिए कि अकलियती, चाहे वो सिख हों चाहे वो मुस्लिम हों, वो अगर चाहें तो कांग्रेस को जिता भी सकते हैं और चाहें तो कांग्रेस को और हरा भी सकते हैं। और इस बात हुआ भी यही कि बहुत से अकलियती इलाकों में कांग्रेस को शिकस्त हुई और जो 6 उनके कैंडिडेट जीते हैं वो अकलियती इलाकों से ही जीते हैं। तो क्या वक्त नहीं आ गया है कि अकलियती या अकलियतों के मसाइल पर कांग्रेस एक बार फिर तवज्जो दे?
आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अकलियतों का एक बहुत रोल, बहुत अहम रोल है और इलेक्शन के अंदर वो हराने और जिताने का दोनों का काम कर सकती है। दिल्ली के अंदर अकलियत की अक्सरियत कांग्रेस के साथ रही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और हिंदुस्तान भर में रहती है। कांग्रेस पूरी कोशिश करती है कि अकलियतों के मफादात की निगहबानी करे, उनके मफादात का ख्याल करे और उसके साथ साथ मुस्तकबिल के अंदर आपकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, हमें और ज्यादा करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार को ज्यादा अकलियतों के मफादात को देखना होगा, उनके मसाइल को हल करना होगा, उनके एतमाद को जीतना होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जहां तक सवाल लोकपाल के क्रेडिट का है, मैं जरूर कहूंगा, देखिए क्रेडिट सरकार को ही जाता है, राज्यसभा में सरकार की अक्सरियत नहीं है, इसलिए बगैर अपोजिशन के वो बिल पास नहीं हो सकता था। लेकिन बिल बनाना, बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना, ये सारे काम सरकार ही करती है। अगर सरकार ना करे तो वो बिल ही पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ सकता है
जी।
इसलिए हर सियासी जमात चाहेगी कि उसको उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट मिले और अल्टीमेटली ये फैसला देश के लोग करेंगे
जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर पास हुआ है तो इसका क्रेडिट किसको जाता है?
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। एक दिलचस्प सूरत हाल रही हिंदुस्तान के रियासती इंतखाबात के नतज के बाद, और अब आइंदा आने वाले जो चंद महीने हैं जब आम इलेक्शन होंगे तो उस वक्त तक ये मौजू जो है वो ज़ेर बहस रहेगा। बहरहाल सूरत हाल दिलचस्प है। अब देखना यह है कि दिल्ली में हुकूमत किसकी बनती है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।